ये आकाशवाणी है। अब आप अंजलि से समाचार सुनिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी है। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक को पहले ही मंजूर कर चुकी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून किसी मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। उन्होंने विधेयक को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है। श्री रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी पेश किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ में नहीं आएगा।
सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकाल।
विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये विधेयक संविधान के खिलाफ है और सरकार कई मुद्दों पर अपनी विफलता छिपाने के लिए ये विधेयक लाई है। बिहार और हरियाणा सहित देश के कई राज्यों, संगठन और लोग वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत कर रहे हैं। बिहार में पसमांदा मुस्लिम समाज के संयोजक डॉ. फिरोज मंसूरी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह विधेयक पसमांदा मुसलमानों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। हरियाणा हज कमेटी के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर खुर्शीद आलम ने कहा कि वक्फ बिल से सिर्फ उन लोगों को परेशानी हो रही है जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। संसद ने आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे स्वीकृति दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य भारत में विदेशी लोगों के आव्रजन, प्रवेश और ठहरने को विनियमित करना और आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कानूनों में होने वाले दोहराव को कम करना, संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और डाटा प्रबंधन तथा सत्यापन में होने वाली कठिनाई को दूर करना है। उन्होंने कहा कि विधेयक भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के सभी नए रिकॉर्ड को बनाए रखने और प्रबंधन में सहायता करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की 3री यात्रा है। प्रधानमंत्री कल बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेतोंगतार्न शिनवात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल से पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। पुर्तगाल की यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा से मिलेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के निमंत्रण पर 9 अप्रैल से 2 दिन की यात्रा करेंगी। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1681 रेल इंजनों का निर्माण करके अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। ये पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में 1472 इंजनों के निर्माण की तुलना में 19% की वृद्धि है। ये रिकॉर्ड निर्माण देश में रेल इंजन निर्माण के लिए अब तक का सबसे अधिक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज से नए शुल्क लागू कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क राष्ट्रपति की घोषणा के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे। ऑटो आयात पर 25% शुल्क कल से प्रभावी होगा। आईपीएल 2020 क्रिकेट में बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु द्वारा दिए गए 170 रन के लक्ष्य के जवाब में मैच 8 विकेट से जीत लिया है। मैच में गुजरात टाइटन्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी कर रॉयल चैलेंजर्स ने 8 विकेट पर 169 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।